रहस्यपूर्ण चिट्ठी। कल जो चर्चा चली, अभी जो पूज्य गुरुदेव का जो अष्टपाहुड पे भाव पाहुड पर गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा है, उसमें प्रकरण वही चल रहा है पूरा कि भाव शुद्धि का उपाय शुरू हुआ था 12 भावना से, तत्व चिंतन से, ब्रह्मचर्य की भावना से। फिर कल जो आया था कि हे मुनि, तू सचित्त आहार पान का त्याग कर। मुनि को होता नहीं है ये, लेकिन हो जाए। देखो, एक होता है अतिचार और एक होता है अनाचार। यदि मुनि अवस्था में अतिचार भी ना लगे तो प्रतिक्रमण का क्या वैल्यू है। तो संजुलन कसाय में उस योग्य कदाचित अतिचार लगते हैं, संजुलन कसाय के योग में। आज जो विषय आया कि वचनों द्वारा स्वयं मुनिराज गुरु के समक्ष अपने दोष व्यक्त करते हैं, कमाल है। निर्दोष स्वरूप मुनिराज को भी दोष होते हैं। यहां चारित्र की अस्थिरता का विषय है। अमृतचंद्र आचार्य देख लो आप, कहते हैं कि मैं मेरी परम विशुद्धि के लिए ये टीका लिख रहा हूं। हम दिन रात दोषों में डूबे हैं तो भी अपने को निर्दोष बताते हैं, और महामुनि भगवंत जिनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, वो किंचित परिणति का जो दोष होता है उस दोष का ज्ञान ना हो और उस दोष को दोष स्वीकार ना करे तो गुणस्थान से गिर जाए। इसलिए वास्तव में अपनी दोष, दो शब्द आए इसमें, गरहा शब्द है मूल, गरहा। एक होती है निंदा, एक होती है गरहा। निंदा मानसिक होती है और गरहा वाचनिक होती है, वचन से कही जाती है। कोई कहे कि हम तो मन ही मन में निंदा कर लेंगे अपने दोष की, उसमें भी छल है। यदि जब दोष को दोष मान लिया तो गुरु के समक्ष कहने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने उदाहरण दिया मां का, जैसे बालक मां के समक्ष कुछ छुपाता नहीं है और अपनी बात बता देता है। वास्तव में गुरु होते ही मां के स्थान पर है। वो जगत को नहीं बताती कि इसने ये दोष किया है, लेकिन जैसे मां अपने बेटे के दोष का परिहार करती है, वैसे ही गुरु अपने भक्त के दोष का, शिष्य के दोष का परिहार कर देते हैं। गरहा शब्द है बहुत। आपको कि मुनि को कौन से दोष लगते होंगे, सामायिक कर रही, सामायिक में करते करते कदाचित निद्रा आ गई। मूलाचार में आया है वर्णन, एक बार मूलाचार पढ़ो पूरा और एक श्रावकाचार, दोनों का भूमिका का ज्ञान हो जाएगा कि मुनि की भूमिका में बाह्य क्रिया कौन सी होती है। क्रिया है वो मुनि धर्म न थी, पर जो संजुलन कसाय के योग में जैसी मुनि का जीवन होता है, मूलाचार में आया। अब सामायिक तो आनंद लेने की चीज है, कदाचित प्रमादवश अल्प झोंका आ गया तो गुरु को जाकर कहेंगे कि प्रभु आज मेरे से बड़ा भारी अपराध हो गया, तब गुरु उनको प्रायश्चित देंगे। गुरु मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो देखेंगे कि ये मुनि युवा है या वृद्ध। तो देखा कि ये तो वृद्ध है मुनिराज, तो उनको कहा कि तुम 1 महीने तक एक भी उपवास नहीं करोगे, ये तुम्हारा प्रायश्चित है। कमाल हो गया। और एक युवा और मुनिराज आया, महाराज मेरे को भी नींद आ गई आज सामायिक में, तो उन्होंने कहा आप 1 उपवास और 1 पारणा करोगे। बोले यार कैसे गुरु है, उनको पुरस्कार दे रहे हैं, मेरे को दंड दे रहे हैं। कि मुनि गुरु होते हैं, वो उनका उद्देश्य जबरदस्ती दंड देना नहीं, उनका उद्देश्य स्वरूप में स्थापित करना है। युवा मुनि को नींद आई अधिक खाने के कारण और वृद्ध मुनि को नींद आई कमजोरी के कारण। तो वो इमूलाचार में आया ये वाला विषय, हाँ, अपराध एक और जो दंड है वो दो तरह के, और एक तो पुरस्कार जैसा लग रहा है। ये श्री गुरु में करुणा होती है। बाद में बहुत विषय आया राजश्रेणिक वाला विषय, कभी कभी देखो आश्चर्य, प्रथम तीर्थंकर होंगे अयोध्या में, 84,000 वर्ष लेकर नरक में है, कमाल है। ये अपराध का फल तो मिलता ही मिलता है, परिणाम फल ना दे तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। इसमें पूरा चरणन युग आ गया, अरे कौन मेरे दोष देख रहा है, इसमें क्या दम है, मैं मेरे दोषों का सबसे पहले साक्षी मैं हूं ना खुद, मैं मेरे दोषों का साक्षी हूं, केवली तो जान ही रहे, और जगत मेरे दोष जान लेगा तो इसमें क्या बात है, मैं जैसा हूं वैसा मुझे दुनिया जान ले, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये भावना जब तक ना हो तो दोषों का परिहार नहीं हो सकता। कृपालु देव के एक पत्र में आया, मैं पत्र क्रमांक भूल गया, उन्होंने विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में लिखा है, ये प्रकरण जो 5 लब्धि होती है तो उसमें विशुद्धि किसको होती है कि जो धर्म क्षेत्र में बालक बन जाए, बालक, बालक का अर्थ ये दोष है मेरे अंदर, अधिक इसलिए गौरव छोड़कर मान छोड़कर श्री गुरु के चरणों में ये कहना, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। फिर 107 में क्षमा भाव की बात आई थी, मुनि तो क्षमा के धारी होते हैं, उनको कोई कैसी भी वचन कहे, निंदा के वचन कहे, पहाड़ियों में गमन कर रहे हैं, नगर में निकल जाए तो लोग कहने लगे नंगे जा रहे हैं, देखो कुछ काम नहीं है, देखो समाज पे भार है, कुछ भी कह दे, जगत तो जगत ही है, ऐसा है। एक बार ऐसी घटना घटी थी, ये वर्तमान की घटना है कलकत्ता की, क्योंकि अभी मैं किसी व्यक्तिगत मुनिराज कौन कैसा है वो चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो घटना बता रहा हूं। तो बहुत पूर्व हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लोग बताते देशभूषण मुनिराज कलकत्ता गए थे, तो वहां पहली बार गए कोई मुनि, तो लोगों ने बंगालियों ने तेजाब की बोतल भर के फेंक दी, कांच के टुकड़े फेंक दिए, बोले नग्न नहीं आने चाहिए, नग्न नहीं आने चाहिए, ये बहुत गलत है। ऐसा भी हो सकता है, किसी कोई समझता हो कि मुनि दशा तो आनंद लेने की दशा है, ये शुद्ध उपयोग की बात है, पर बाहर मुनि दशा माने प्रतिकूलता का ढेर, बाहर प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, कहां वो राजा था पहले और उसका शासन चलता था, और अब कोई भी उसको कैसे भी वचन कहे, और यदि सहन ना हो तो घर में ही बैठो, तुम्हारे बस की नहीं है मोक्ष जाना, पूरा विश्व मिलकर निंदा करे तो चेहरे पर सिकन भी नहीं आवे, सहना नहीं, मजबूरी बस सहता है यो तो जीव, कभी कभी व्यक्ति कमजोरी में भी सह लेता है कि मुझे प्रतिकार करने की ताकत नहीं है, तो चलो जो कहा वो सह लो, विक्रिया रिद्धि हो और मुनिराज पर ऐसा बल हो कि भौएं तिरछी करे तो शत्रु मानुष्योत्तर पर्वत से टकराए जाकर, इतना बल हो तो भी मुनिराज प्रतिकार नहीं करते। क्या जैन धर्म है, उसको समझ में आए, पारसनाथ पर पत्थर पड़े और पारसनाथ उन पत्थरों को कैच करते, मान लो इतना बल था उनमें, और उल्टे कमठ को देकर मारते, तो हम उनको बेदी में बैठाते क्या। तो ये जैन धर्म बहुत अद्भुत है। ये विषय आया, एक एक गाथा कैसी गजब की है, ये आराधना करने का शासन है वास्तव में। मुमुक्षु मुमुक्षु घर में मोक्ष जाने के लिए पैदा होता है वास्तव में, और मोक्ष के सिवा यदि हम अन्य किसी कार्य में लगते हैं तो समझना अच्छी चीज गलत लोगों के हाथ लग गई है, नहीं आ रहा समझ में। क्योंकि कोई कहे कि हम यही करते रहें क्या, अब सुबह से शाम तक हम बाल बच्चे नहीं संभालें क्या, हम घर गृहस्थी नहीं करें क्या, कि भाई वो उदय करता है, समझ में नहीं आया तुम्हारी बात, उदय कर्म का उदय करता है, ये ऐसा अमृत है कि निरंतर यही पियो, दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, ऐसा है। अमृत पी के जहर कौन पीना चाहेगा फिर, ऐसी अद्भुत बातें हैं भाई। चलो कहां आ गए, कल जो चर्चा चली रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि भाई सम्यक्त होने के बाद भी शुभाशुभ भाव क्यों होते हैं, सम्यक्त्वी शादी विवाह क्यों करता है, सम्यक्त्वी को विकल्प क्यों देखे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। आप जानते हैं हम व्यक्ति प्राणायाम करता है मॉर्निंग में, श्वासोच्छ्वास लेता है, तो एक होता है श्वास और एक होता है उच्छ्वास। खींचने को श्वास कहते हैं, छोड़ने को उच्छ्वास कहते हैं। तो व्यक्ति लोक में श्वास से जीता है या उच्छ्वास से जीता है, बोलो ना। जीता तो वो प्राणवायु से है, क्योंकि खींचता ऑक्सीजन है और छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड, गंदी वायु छोड़ता है। लेकिन गंदी ना छोड़े तो ताजी ग्रहण कैसे करेगा? अरे समझ में आया नहीं आया? इसलिए मुनि भगवंत स्वरूप से बाहर स्वरूप में जाने के लिए आते हैं। स्वरूप में थे और स्वरूप से बाहर क्यों आई? कि उन्हें दोबारा स्वरूप में जाना है। जैसे यदि श्वास बाहर ना निकले तो दोबारा खींचेंगे कैसे? ऐसा है, इसलिए सब फिर क्यों नहीं ठहर रहे, अंदर ही रहे ना, ये नियम है। आप जानते एक आत्मा में वीर्य गुण है, जब तक वीर्य का संपूर्ण विकास नहीं होता तब तक ये यथार्थ निर्णय होने पर भी कि स्वरूप में ही अमृत भरा है, वो पर्याय अंदर नहीं ठहरती। बादाम अच्छी चीज है डॉक्टर ने बताया, और उससे बहुत पौष्टिकता आती है, लेकिन पचाने की भी तो ताकत होनी चाहिए। कोई एक किलो खा ले तो मरेगा नहीं मरेगा? कोई चीज अच्छी होने पर भी सेवन की तमीज होनी चाहिए और उसके सेवन करने की अंदर पावर होनी चाहिए। तो ज्ञानी के स्वरूप पसंद आ जाने पर भी उसकी पर्याय में भी इतनी ताकत नहीं है, इसलिए वो पर्याय बार बार बाहर आती है, बार बार बाहर आती है। जब बाहर आती है तो उसको सविकल्प दशा कहा। क्या कहा? सविकल्प दशा में शुभ भाव भी अशुभ भाव भी। कदाचित रामचंद्र जी जैसी दशा हो जाए, कदाचित आदिनाथ जैसी दशा हो जाए सविकल्प दशा में। देखो नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, कमाल है। ऐसा भी होता है। ये पहरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं हम सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन की कोई बाह्य परिस्थिति ऐसा ना बना दें कि कहीं हम सम्यक से दूर हो जाएं। क्योंकि हमारी नजरों में हम क्या समझते हैं सम्यक दृष्टि माने? ऐसा बैठा हो बिल्कुल एकदम अलग चल रहा हो, अलग वेशभूषा हो उसकी। मैं ये कहता हूं वेशभूषा पंचम गुण स्थान में भी जरूरी नहीं है चेंज हो। मान लो एक राजा पंचम गुण स्थान वर्ती है और राजपाट करता है, तो गद्दी पर धोती दुपट्टा पहन के राजपाट करेगा? वो राजशाही कपड़े पहनेगा नहीं पहनेगा? पहनेगा। वो देश की रक्षा करेगा नहीं करेगा? करेगा। देश बदलना जब ग्रह छोड़ देता है तब से होता है वास्तव में देखा जाए तो। इसलिए चौथे गुण स्थान वर्ती की पूरे चारों अनियोगों में कहीं कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि सम्यक दृष्टि के बाहर में ये लक्षण होने चाहिए, ये क्रिया होनी चाहिए। उस सब क्रिया से कोई संबंध है नहीं। हां अष्टपाहुड़ में एक जगह ये लिखा है कि सम्यक दृष्टि के प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि लक्षण होते हैं, और वो कदाचित किसी के नजर आए और कदाचित ना भी आए। ऐसा है, हो सकता है कोई जिसमें दिक्कत। आज भी विधेय क्षेत्र में सम्यक दृष्टि भरे पड़े हैं और मोक्ष जाना हुआ तमाशा है, खेल है। पिताजी मैं मंदिर जा रहा हूं, क्या ठीक है जाओ, होकर आए, मालूम पड़ा कि तुम्हारे लड़के को केवल ज्ञान हो गया। वहां कोई आश्चर्य नहीं होता, वहां सम्यक दृष्टि भरे पड़े। हमारा जन्म इस लोक में ऐसा हुआ है तो हमें ऐसा लगने लगा कि सम्यक तो माने कोई ऐसी चीज होती होगी कि सर पे सींग उगते होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसे साधारण स्वभाव भाव हो सकते हैं। सम्यक भी अपने बच्चे को गोदी में खिलाएगा नहीं खिलाएगा? सम्यक दृष्टि का बालक ने दूध बिखेर दिया, कोई ज्ञानी है और ज्ञानी माता है और ज्ञानी पिता है और बालक को दूध पिला रही थी और उसने दूध बिखेर दिया, तो क्या कहेगा, बेटा वो तो बिखरना था, खूब बिखेर। वो हो सकता है उसकी धुनाई करे पकड़ के, उसकी पिटाई करे, उसको कहे कल से बिखेर के दिखाना, टांग तोड़ दूंगी तेरी। क्यों? क्योंकि बाहर का शुभाशुभ भाव वो उसी जाति का आएगा। चौथी, चारित्र मोहि वस लीस न संयम पे सुरनाथ जजिए। सुरों के नाथ जजती है। एक जगह लिखा, आप आश्चर्य करोगे, इसी रतनकंड साहब का चार में जो रात्रि में चल रहा है, सम्यक युक्त चंडाल भी देवों द्वारा पूजनीय है और मिथ्यात्व सहित देव भी धिक्कार का पात्र है, और मरीने कुत्ता बन जाता है, मर के कुत्ता बन जाएगा। तो ये ऐसा तो सम्यक को इस जाति के शुभाशुभ भाव आ सकते हैं उसमें कोई, लेकिन ये सावधान रहना, आ भी जाए तो भी सम्यक का औदेक परिणाम को आदर्श मत मनाना कभी। जैसे भरत जी के 96,000 स्त्रियां थी तो उनके नियोग था, कोई ये कहे ये तो हमारी एक के पीछे पड़े हैं और उनके 96,000 थी, लेकिन वो पद था ऐसा, वो उनका उस जाति का उदय था, कोई क्या करेगा उसमें। देवों के कम से कम 32 होती है तो देव पर्याय की व्यवस्था है वो तो। और एक जम्बू स्वामी को क्यों याद नहीं करते आप, कि चार विवाह हुए और उनको देखने के लिए तैयार नहीं है जम्बू स्वामी। एक सम्यक दृष्टि को 96,000 विवाह करने का परिणाम आ सकता है और एक सम्यक दृष्टि को एक भी विवाह करने का परिणाम नहीं आता। तो विवाह करने से मिथ्या दृष्टि हो गया ऐसा नहीं है, और विवाह नहीं करने से वो सम्यक दृष्टि हो गया ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व का लक्षण शुद्धोपयोग नहीं है, सम्यक्त्व का लक्षण प्रतीति है, सम्यक्त्व का लक्षण औदेक भाव नहीं है। एक नरक में नारकी, दूसरे नारकी को सम्यक दृष्टि नारकी को कोई आंख फोड़ने आए तो बताओ वो अपना बचाव करेगा या नहीं करेगा, और अपने बचाव में उस दूसरे नारकी को मारेगा या नहीं मारेगा, बताओ मारेगा। अभी ऐसा ही हो रहा है, नीचे ऐसा लिखा इसमें शब्द, उन परिणामों में तद्रूप होता देखा जाता है, हर्ष विषाद भी करता है। चौथे गुणस्थान की यही दशा है, लोगों को नहीं मालूमी, वरना तो गुणस्थान की परंपरा ही खत्म हो जाएगी, फिर तो एक ही गुणस्थान होगा, या तो पहला या फिर 13वां 14वां और सिद्ध दशा। अरे आप कह रहे हो चौथा गुणस्थान, पंचम गुणस्थान में भी असंख्यात भेद है, असंख्यात भेद। कैसे? सुनिए आप, कि किसी को पंचम गुणस्थान हुआ तो पंचम गुणस्थान में किसी की पहली प्रतिमा है, किसी के दूसरी प्रतिमा है, किसी के तीसरी प्रतिमा है। शुद्धि एक जैसी और विशुद्धि में अंतर, क्योंकि मान लीजिए 10 तरह के पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, 10 पंचम गुणस्थान वर्ती, और 10 पंचम गुणस्थान वर्तियों के शुद्धि तो सबके दो कसाए चौकड़ी के अभाव पूर्वक है, पर विशुद्धि में अंतर है। एक पंचम गुणस्थान वर्ती घर में है और एक पंचम गुणस्थान वर्ती ने सप्तम प्रतिमा ले ली, बाल ब्रह्मचारी है, एक सप्तम गुणस्थान वर्ती पंचम गुणस्थान वर्ती आठवीं प्रतिमा वाला है, एक नौवीं प्रतिमा वाला है, एक छुल्लक बन गया, एक एलक बन गया। आप जानते हो भगवान की 12 सभा में आर्यका के लिए और साधारण स्त्री के लिए अलग कोठा नहीं है, एक ही कोठा है, बैठने के लिए अलग व्यवस्था नहीं है। भगवान की 12 सभा में जिस अर्जिका माता के दो कसाय का अभाव हो गया और हर 15 दिन में मैक्सिमम शुद्धात्मा में शुद्धोपयोग का सेवन करती है उसके लिए, और एक अव्रती श्राविका अथवा सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, केवल जिन धर्म के पक्ष वाली साधारण स्त्री, उनके लिए एक ही कोठा है, एक कोठा। हाँ, सब श्राविका कहलाती है साधारणतया। हम मुनियों के लिए अलग है, मात्र मुनियों के लिए अलग होता है। मनुष्यों में देखें तो छुल्लक, एलक, मनुष्य, यहां तक कि चक्रवर्ती और एक साधारण गरीब, उन सब के लिए एक ही कोठा है, अलग से कोठा नहीं है, एक जगह बैठने की व्यवस्था है 12 सभा में। अब क्या रहता है कि पंच कल्याणकों में समय कम मिलता है, वरना ये सब भाव आता है कि ये लोगों को पता पड़े कि ये अब प्रोग्राम इतने होते हैं, समय कम है, तो जितना प्रस्तुत करने का भाव है उतना प्रस्तुत नहीं हो पाता है, ऐसा है। अब आगे जो आ रहा है, हवि सविकल्प द्वाराज निर्विकल्प परिणाम थवानु विधान कहिए चाहिए। बहुत अद्भुत है ये, इतना अद्भुत है कि डूब जाओ आप, ऐसा अद्भुत विषय लिखा टोडरमल जी साहब ने। फिर से सुनना, विकल्प से कभी निर्विकल्प नहीं होता, विकल्प का अभाव करके निर्विकल्प होता है, लेकिन निर्विकल्प कौन होगा, विकल्प वाला निर्विकल्प होगा। अरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। मधु भाई निद्रा आ रही है क्या? मुझे तो कल पता पड़ी 83 के और बिल्कुल युवाओं जैसा जोश है। सविकल्प द्वारा निर्विकल्प क्यों कह रहे हैं? यहां सविकल्प का अर्थ पहले टोडरमल जी ने किया शुभ अशुभ भावों में रहना, दया दान पूजा आदि के परिणाम और घर गृहस्थी के विषय सेवन के परिणाम, ये दोनों को सविकल्प कहा। लेकिन स्थूल सविकल्प द्वारा निर्विकल्प नहीं होता। यहां क्या कहते हैं कि कोई ज्ञानी जीव, फिर से सुनना सावधान होकर, यद्यपि एक सम्यक दृष्टि को जब दोबारा शुद्धोपयोग होगा तब पुनः वो बुद्धिपूर्वक स्वरूप में जाने का प्रयत्न करता है, लेकिन एक अनादि मिथ्या दृष्टि जिसको कभी शुद्धोपयोग नहीं हुआ उसकी भी विधि यही है। फिर से सम्यक दृष्टि को शुद्धोपयोग की जो विधि है, मिथ्या दृष्टि के भी शुद्धोपयोग की विधि वही है। अंतर इतना है कि सम्यक दृष्टि को ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता और अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रयत्न करना पड़ता। प्रयत्न का अर्थ क्या है? व्यवहार भाषा है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का भी अर्थ क्या है? स्वीकृति स्वरूप की। अब क्या कह रहे, ते सम्यक दृष्टि कदाचित स्वरूप ध्यान करवानो उद्यमी थाए छे। एक एक वाक्य देखना, टोडरमल जी ने बड़ा उपकार किया ये लिखकर, और आपको स्पष्ट कहीं किसी ग्रंथ में शायद मिले कि शुद्ध उपयोग कैसे होता है, जो विधि इसमें लिखी है। सम्यक दृष्टि कदाचित स्वरूप ध्यान करवानो उद्यमी थाए छे। इसे आप अपने पर भी लगा सकते हैं कि जो सम्यक तो सन्मुख है वो भी स्वरूप ध्यान करने का उद्यम करता है। ये नहीं लिखा कि आप पूजन पाठ करवानो उद्यम थाए छे, यात्रा करवानो उद्यम थाए छे, कि ये तो सब स्थूल परिणाम छे। यहां तो स्वरूप में जाने की बात चल रही है। और कदाचित क्यों लिखा, कदाचित क्यों लिखा? सुनो सुनो सुनो, कदाचित इसलिए लिखा क्योंकि चौथे गुण स्थान की बात है। मुनिराज होते तो मुनिराज तो निरंतर स्वरूप ध्यान करने का उद्यम करते हैं। ज्ञानी के प्रतीति तो निरंतर स्वरूप की है, ज्ञान धारा बह रही है, लेकिन अभी उसकी भूमिका के अनुसार कदाचित लिखा। कर्णानियोग के विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि एक सम्यक दृष्टि को 6 महीने में अधिकतम, 6 महीने में अधिकतम स्वरूप का अनुभव होना ही चाहिए। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर एक बार आत्मा का अनुभव होना ही चाहिए, यदि नहीं होता तो मिथ्यात्व में आ जाएगा। समझ, इसीलिए अपने यहां 10 लक्षण पर्व 4 महीने में एक बार आ जाता है। 3 पर्व आते 10 लक्षण 3 बार, और 3 बार ही आती है अष्टानिका। अनंतानुबंधी कसाय ऐसा भी कहा जाता है कर्णानियोग के अनुसार, कि यदि कोई कसाय किसी का किसी से बैर है, गुस्सा है, वो यदि 6 महीने के अंदर ना धुले तो अनंतानुबंधी बन जाएगी। इसलिए मैक्सिमम 6 महीने के अंदर मन का मालिन्य दूर होना ही चाहिए। इधर भी वो हो सकता है कदाचित ज्ञानी बाहर के शुभाशुभ विकल्पों में इतना उलझ गया हो, देश के संकट में, युद्ध आदि में, कि स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई हो, तथापि इतना भी नहीं उलझेगा, आप कहोगे कि ऐसा भी होता कि प्रतीति तो निरंतर चल रही है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता। प्रतीति माने श्रद्धा गुण की निर्मलता तो निरंतर बरकरार है, सविकल्प में भी, सविकल्प में भी, भोग भोगते समय भी, युद्ध लड़ते समय भी। घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी। अनजल धन के त्यागी, अनजल धन के त्यागी भरत जी, घर में ही बैरागी। अभी 96,000 रानियों से मिले और मिलते ही कोई सम्यक्त्वी का अर्थ ये थोड़ी होता है कि वो अपने कर्तव्य भूल जाए, घर गृहस्थी के कर्तव्य भी निभाता है। फिर रानियों से कहता है अभी हम एक घंटे में आ रहे हैं, जरा काम है हमें राजपाट का। रानियां तो होशियार होती हैं, पीछे लगा देती हैं, देखो गई कहां है, मालूम पड़ा कि शमशान में सामायिक कर रहे हैं। भर्तीस वैभव, एक बार भर्तीस वैभव पढ़ो, 15 दिन लगेंगे, 1 महीना, या उसको सुनो तो आपकी आपको होगी कितने महापुरुषों की रीत होती है। प्रातः काल उठकर मुनि चक्रवर्ती नग्न पैर शुद्ध वस्त्र में हाथ में कलश लेकर दिगंबर मुनिराजों की राह जोड़ते अपने महल के बाहर, हे प्रभु मेरे आंगन में आओ और मेरे गृह को पवित्र करो। अब चक्रवर्तियों पे कितने चवर ढुलते हैं, चक्रवर्तियों पे चवर कितने ढुलते हैं, 32, तीर्थंकरों पे 64 और चक्रवर्तियों पे 32। तो जिस समय वो आहार के लिए मुनिराज की राह जोएंगे उस समय चवर ढोने वाले उनपे चवर ढोएंगे या नहीं ढोएंगे, नहीं ढोते, मना कर देते, अरे भाई भागो तुम यहां से। आप यदि चक्रवर्ती पे चवर ढोते रहे और वो फिर मुनिराज को पड़गाएगा तो कैसा लगेगा, उनको कहता कि तुम आना मत यहां, भागो यहां से, मुझे मुनिराज के ढूंढना है तो ढूंढो चवर, लेकिन पुण्य पीछे भाग रहा है बार बार। तीर्थंकर के ढूंढते हैं 64 चवर और चक्रवर्तियों पे 32 और नारायणों पर, नारायण जो होते हैं आधे कर दो कितने हुए 16 और प्रति नारायणों पर 8, प्रति नारायणों पर होते 8। इसके बाद जो होते मुकुटबद्ध राजा उनपे होते हैं 4 और साधारण राजा उनपे होते हैं 2 और अति सामान्य राजा उनपे एक भी चवर नहीं और हमारे तुम्हारे ऊपर मक्खियां। जितना पुण्य उतने चवर। पर आश्चर्य तो ये है कि जिन पर 32-32 चवर ढोड़ते हैं वो घर गृहस्थी के धंधे में भी स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि जिनके संख्यात पुत्र पुत्रियां हैं वो तो अष्टमी चतुर्दशी को शुद्धोपयोग कर रहे हैं, गिनती नहीं इतने पुत्र पुत्रियां, और यहां घर में ढंग से 2 बच्चे नहीं है और माथे फटे जा रहे हैं लोगों के, टाइम नहीं है सब, बात मत करो बिजी है। इसलिए इसकी पल्ले पुण्य भी नहीं है ढंग का, क्या करे ऐसा। आगे देखना, त्या प्रथम स्वपर्णु भेद विज्ञान करे। जब उद्यम करता है तो किसी को प्रश्न होगा कि ज्ञानी को तो स्वपर का भेद विज्ञान हो चुका, अब वो दोबारा स्वपर का भेद विज्ञान क्यों करेगा। उपयोग मां, स्वपर का भेद विज्ञान तो चालू है, आपने कल भोजन कर लिया तो दोबारा क्यों करते हो। तो जब जब ज्ञान स्वरूप में जाएगा, जब जब उपयोग स्वरूप में जाएगा, तब तब स्थूलता से सूक्ष्म होता है। तो एकदम विषय कसाई से छलांग लगाकर स्वरूप में नहीं जाया जाता, पहले विषय कसाई की परिणति छूटती है, फिर स्वरूप ध्यान करने का उद्यम करता है। वो उद्यम अनुभव नहीं है, वो उद्यम अनुभव नहीं है, वो विकल्प अनुभव नहीं है, उस विकल्प से अनुभव नहीं होगा, लेकिन वो परिणति मंद होती है, मंद परिणति से शुद्ध उपयोग नहीं होता। सोगानी जी साहिब से पूछा कि चिंतन स्वरूप का चिंतन तो आत्म अनुभव से पूर्व करना चाहिए ना। बोले लगता है तुझे चिंतन का रस है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताओ चिंतन ज्यादा महत्वपूर्ण है या चैतन्य ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसलिए जो ये कहे कि मुझे अनुभव के लिए चिंतन करना है, उन्हें कभी अनुभव होगा ही नहीं। सच बात तो ये कि स्वरूप के प्रेम में स्वयमेव चिंतन होता है। किसी कन्या का किसी राजकुमार से पाणी ग्रहण निश्चित हो गया, विवाह निश्चित हो गया और एक माह बाद विवाह होना है, तो उसकी मां उस कन्या को समझाए कि अपने वर का चिंतन करो, वर का चिंतन करो, पागल वर का चिंतन कर, ले फोटो देख, फोटो देख, चिंतन कर, चिंतन कर। कैसी पागल है, स्वयं ही चलेगा। इसलिए कृत्रिम चिंतन से अनुभूति नहीं होती। वास्तव में कृत्रिम चिंतन चिंता की ही पर्याय है। स्वरूप का प्रेम जिसको है उसको बिना कहे ये चिंतन चलता है, उसी को सविकल्प कहा। सत्य तो ये है, चिंतन आश्रव तत्व है और मैं चैतन्य तत्व हूं। तो आश्रव से चैतन्य कैसे मिलेगा, जीव कैसे मिलेगा, आश्रव से जीव तत्व कैसे प्राप्त होगा? लेकिन यहां विधि इसलिए बता रहे हैं कि सविकल्प वाला ही निर्विकल्प होगा। जिसकी अभी ऐसे ही विकल्प नहीं आए होंगे कि मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं, तो वो स्वरूप में कैसे चला जाएगा? एकदम कठिन लग रहा है, बोलो। बहुत अद्भुत विषय है, एकदम आकाश में उड़ो ऐसा आनंद आनंददायी विषय है। इसलिए दो दो तरह से भेद विज्ञान होता है, फिर से सुनना। एक तो मिथ्या दृष्टि जो भेद विज्ञान करता है वो तो विकल्पात्मक ज्ञान में करता है, खरे खर देखा जाए तो सच्चा भेद विज्ञान है ही नहीं। लेकिन जो अनादि मिथ्या दृष्टि भी जब अंदर प्रवेश करेगा, हम तुम लोग भी, तो भी विधि यही है। सैकड़ों लोग प्रश्न करते ना, अनुभूति का क्या उपाय है? ये है अनुभूति का उपाय। अनुभूति कहो, निर्विकल्प दशा कहो, शुद्ध उपयोग दशा कहो, ध्यान कहो, एक ही बात है। पर याद रखना, ध्यान का ध्यान नहीं होता, ध्येय का ध्यान होता है। क्या कहा? यदि कोई ये कहे कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान का विकल्प कर रहा है। एक व्यक्ति सो रहा है और उस समय उससे पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, और वो उत्तर दे मैं सो रहा हूं, तो सो रहा है या जग रहा है? ऐसे कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है और उससे किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, बोले हम शुद्धोपयोग कर रहे हैं। शुद्धोपयोग वास्तव में देखा जाए, और सुनो गजब की बात, शुद्धोपयोग जिसको प्रकट होता है उसे उस समय यह पता नहीं होता कि मुझे शुद्धोपयोग हुआ है। घबराना नहीं, सुनना पहले ध्यानपूर्वक, क्योंकि आत्मा का भोग और आनंद रहता है उस समय, शुद्ध उपयोग ये विकल्प नहीं रहता। नहीं आई बात समझ में? आई नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सो गया तो सोते समय सोने का विकल्प रहता है या सोने का सुख रहता है? सोने का सुख रहता है। यदि सोने का विकल्प हो तो सोने का सुख नहीं हो। इसलिए शुद्धोपयोग के काल में यदि उस आराधक जीव को ऐसा भासित हो कि देखो मेरे को शुद्धोपयोग हो रहा है, तो शुद्धोपयोग नहीं है। भेद विज्ञान करे, अर्थात जो प्रतीति में था उसको उपयोग में पुनः रिपीट करता है। आगे नो कर्म भाव कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र पोतानु स्वरूप जाने। नो कर्म कह दिया तो द्रव्य कर्म भी आ गए। इन नो कर्म किसे कहते हैं वास्तव में, जल्दी बोलो। आज शरीर आदि, आदि में क्या है? सब माने क्या? इसको सीधा सरल भाषा में कहें तो जिस जिस में हमारा राग पसरता है, ज्ञानी के भी हो सकता चक्रवर्ती है और चक्रवर्ती शुद्ध उपयोग कर रहा है, तो उसका सारा सटखंड का जो वैभव है वो उसका नौकर में है। जो जो द्रव्य कर्म के उद्देश्य बाहर में प्राप्त होता है वह सब नौकर्म कहलाता है। फिर से सुनना, फिर से, जैसे नौकर्म भी इसमें द्रव्य कर्म का निमित्त संबंध होता है। जैसे मैं हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान मेरा नौकर्म है। हाँ, नहीं आया समझ में। अज्ञानी के भी नौकर्म होता है, लेकिन अज्ञानी नौकर्म के माध्यम से मिथ्यात्व का पोषण करता है। ज्ञानी के नौकर्म सद्व्यवहार की मर्यादा होती है। जैसे स्वस्त्री परिस्त्री का भेद नहीं रहेगा, वरना तो सभी परद्रव्य पर तो कोई भी ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नौकर्म का अर्थ क्या है कि जो जो द्रव्य कर्म के उदय से बाह्य में संयोग आते हैं उन संयोगों को नौकर्म कहते हैं। अरे मेरे भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। कल को कोई अपनी छत पे खड़े होकर ये कहे मैं भेद विज्ञान कर रहा हूं, और सबसे पहले भेद विज्ञान में क्या कर रहा हूं कि जाओ अमेरिका मेरा नहीं, छोड़ दिया। अरे जो चीज तुम्हारे उदय से तुम्हें प्राप्ति नहीं हुई उससे भेद विज्ञान नहीं होता, वो तो पृथक ही है। अरे नहीं आई समझ में बात? अब पढ़ना गुरुदेव श्री के प्रवचन में, इसमें बहुत गजब की बात है ये। नौकर्म माने दूसरे के नौकर्म से थोड़ी भेद विज्ञान करूंगा मैं। मैंने मेरा कुर्ता पहना है तो उसी से तो भेद विज्ञान करूंगा कि ये कुर्ता मेरा नहीं है। जो दूसरे का कुर्ता दूसरे के घर में रखा है, मैं उससे कैसे कहूंगा कि उससे मैं भिन्न हूं? उससे कैसे मैं भिन्न हूं, कैसा बोला? अब कोई व्यक्ति भेद विज्ञान के नाम पर ये भेद विज्ञान करे कि पराई स्त्री मेरी नहीं, ऐसा पागल है। वो तो अज्ञान के काल में है, उसकी भी भावना भाई है कि विश्व में परमाणु मत। यहां तो ज्ञानी की बात है ना, कि ज्ञानी स्वरूप में शुद्ध स्वरूप में दोबारा कैसे जाएगा? तो कह रहे नौकर्म से भिन्नता का भास करता है। तो किस नौकर्म से? दूसरे के नौकर्म से या अपने नौकर्म से? किसी को प्रश्न होगा, उसमें तो नौकर्म ही नहीं है, लेकिन असद्भूत व्यवहार ने से उसके जो संयोग प्राप्त हुए हैं, उसको जो संयोग प्राप्त हुए हैं उसके द्रव्य कर्म के उद्देश्य उनसे भेद विज्ञान करता है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं, और अनादि मिथ्या दृष्टि भी जब स्वरूप में जाएगा उसकी भी विधि यही है। जीव कैसे कैसे मिथ्यात्व का पोषण करता है आप जानते हो? अज्ञानी का नौकर्म क्या क्या है? सुनो, जल्दी बोलो। अज्ञानी का नौकर्म शरीर, अज्ञानी का नौकर्म तीनों लोक है, क्योंकि उसकी तीनों लोक में ममता पड़ी है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में लिखा, अज्ञानी ने मानो तीनों लोक चूरन करके चाट लिए हों, पीस कर उनको, इतना उसकी ममता है, इतना उसका परद्रव्य में ऐब है। ये परद्रव्य का पाप नहीं लगता हमको, पाप पुण्य आदतों का लगता है। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी करी 1 रुपए की और किसी ने की 2 रुपए की चोरी, तो पाप किसको ज्यादा लगेगा? ना, कितना चुराया इसकी पाप नहीं लगता, चोरी की आदत का पाप लगता है। थी जेब में 1 रुपया, 100 होते तो 100 निकाल लेता, आदत का, हैबिट का पाप लगता है। तो अज्ञानी की हैबिट परद्रव्य में एकत्व करने की है। अरे नहीं आया समझ में? तो अब वो जो मिला उसके उद्देश्य से उसमें भी एकत्व करता है, और जो पदार्थ नहीं मिला उनको चाहता है, उसको कहते अभाव रूप एकत्व। फिर से सुनना, एक तो भाव रूप एकत्व होता है, एक अभाव रूप एकत्व होता है। तो जो उद्देश्य प्राप्त पदार्थ हैं उनमें एकत्व करता है अज्ञानी, और जो प्राप्त नहीं हुए ये मुझे मिल जाए और इनसे मुझे सुख मिलेगा, ऐसा एकत्व करता है। इसलिए अज्ञानी का नौकर्म तीनों लोग हैं। इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मिथ्यात्व। और जब और नजदीक आया तो मैं हिंदुस्तानी, ये राष्ट्रीय मिथ्यात्व कहलाया, राष्ट्रीय मिथ्यात्व। मैं हिंदी वाला, मैं गुजराती, ये कहलाया प्रांतीय मिथ्यात्व। मैं शरीर वाला, मैं काला, मैं मोटा, मैं बोलता हूं, अरे कभी कभी वाणी में अमृत होता है, परिणति में जहर। हम बोल रहे हैं ये, संजय कुमार अभी ये बोल रहे हैं कि मैं वाणी का करता नहीं, लेकिन इसी समय मैं ऐसा एहसास करूं कि मैं अच्छा बोल रहा हूं तो इसी गद्दी से देह छोड़ के निगोद जाऊं, ऐसा है। ये कहां कैसे गलती हो जाती है जीव को मालूम नहीं पड़ता। वचन तो कुंद कुंद के हैं, वचन तो टोडरमल जी के हैं, वचन तो गुरुदेव के हैं, लेकिन अभिप्राय हम अपना मिला लेते हैं, ऐसा हो जाता है। मैं श्रोता हूं, मैं वक्ता हूं, अरे आत्मा वक्ता होना श्रेष्ठ है या ज्ञाता होना श्रेष्ठ है? ऐसे अनंतों केवली हो गए कि जिन्होंने जीवन में एक भी वचन नहीं बोला और मुख चले गए, मुख केवली। बोलने का क्या महत्व है? बोलने से कोई सुख मिलता है क्या? बोलने का कोई महत्व है क्या? लेकिन अंदर से व्यक्ति को उसका रस पुष्ट हो जाए तो कभी कभी मैं अपने मन की बात बता रहा हूं, ये तो गुरुदेव ना होते तो वक्ताओं को भी सही राह नहीं मिलती। सच पूछा जाए तो श्रोता का कल्याण जल्दी होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास अभिमान करने लायक क्या है? उसको तो वक्ता बिचारा बार बार दोष ही दोष बता रहा है, तो वो तो दोष को ग्रहण करके उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वक्ता तो दोष बता रहा है और कदाचित से उसने अपने दोष नहीं निकाले तो फिर उस वो किस कोर्ट में जाएगा? ऐसा है, ये बहुत खतरनाक गद्दी है, ये कोई साधारण नहीं है, ये गणधर का पद है ये इस पर हजारों तलवार लटकी रहती है, ये तलवार की धार पर चलने जैसी है, तीर्थंकरों का मार्ग है, साधारण नहीं है ये, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। तो नो कर्म से भेद विज्ञान करता है, भेद विज्ञान तो है उपयोग मां, माने उपयोग को सूक्ष्म करने के लिए। भाव कर्म रहित, भाव कर्म माने राग द्वेष, मैं क्रोधी, मैं मानी, तो सब ज्ञानी को तो नहीं है, लेकिन अस्थिरता वस्त है ना, अभी अभी बच्चे को डांट के आया, अभी दुकान से आया, अभी राजपाट से आया, लेकिन तुरंत स्वरूप की स्मृति हो गई, कहा कि अरे इस जंजाल से बचो। आप जानते हो जब लंका पर युद्ध हुआ राम और रावण का, लक्ष्मण का, तो सैकड़ों स्त्रियां विधवा हो गई और रावण मारा गया, तब रामचंद्र जी तो परम सज्जन थे, उन्होंने विभीषण और मंदोदरी से क्षमा मांगी, रावण का दाह संस्कार किया राम ने, जिसकी स्त्री का हरण किया वो व्यक्ति उस पुरुष का पहले दाह संस्कार करता, और मंदोदरी को हाथ जोड़कर बोलते, देवी मेरा प्रयोजन आपको कष्ट देने का नहीं था, मुझे तो मेरी सीता चाहिए थी, पर हम क्या करें, ऐसे महान पति तुम्हारे, विद्वान पंडित उनमें ऐसा भाव कैसे आ गया, और मुझे कोई लंका पर राज करने की भावना नहीं है, मुझे कोई राजा नहीं बनना, तुम ही राज करो, और विभीषण को तिलक कर दिया, और तिलक करके अयोध्या में वापस आई, तो पूरी अयोध्या आरती उतारने को तैयार, लेकिन राम की आंखों से तो आंसू बह रहे, और रत्नों के महल में ऐसा बैठ गए, तो उनकी मां कहती है, आज 14 वर्ष बाद मेरा बेटा वापस आया है, और पूरी अयोध्या तुम्हें राजा देखने के लिए आतुर है, तुम राजपाट करो। तो राम कहता है, मां मैं इन विजय यात्राओं से थक गया हूं, मैंने उन चीख पुकारों को सुना है स्त्रियों की, मैंने सैकड़ों स्त्रियों को विधवा होते देखा है, जिसे जगत विजय कहता है वो वास्तव में विजय में पैसाचिकता है, क्रूरता है, हिंसा है, मुझे तो मेरे स्वरूप का आनंद लेना है। तो लक्ष्मण से कहा कि तुम राजपाट संभालो, अब मेरे अंदर इतनी कर्म शक्ति नहीं रही कि मैं अयोध्या का शासन चलाऊं। तो पद्म पुराण में ऐसा शब्द दिया गजब का कि ज्ञानी दूसरों पर विजय करके भी उसके कष्ट को देखकर अपनी हार मानते हैं, इसलिए अंदर जाकर शुद्धोपयोग के लिए सामायिक में बैठ जाते हैं, और अज्ञानी दूसरे पर विजय करकर अट्टहास करते हैं कि हमने दूसरों को जीत लिया। भाव कर्म, राग द्वेष आदि अरे आत्मा राग करे ये तो बहुत दूर, सच तो ये है कि आत्मा राग को जानता भी नहीं है। फिर से सुनना बात, दो चार पांच मिनट है। क्या कहा? आत्मा राग करे ये तो बहुत दूर, आत्मा राग का ज्ञाता भी नहीं है। कैसे नहीं है? कि किसी ने ये कहा मैं रागी, किसी आत्मा ने ये कहा मैं रागी, तो राग ज्ञान में झलका तब रागी कहा, या ज्ञान में राग नहीं झलका तब रागी कहा? प्रश्न समझ में आया नहीं आया? ये सब ज्ञान में राग झलका तब रागी कहा, तो ज्ञान में झलकने वाला राग राग से निर्मित है या ज्ञान से निर्मित है? एक स्वच्छ तालाब में चांद झलका, तो तालाब में झलकने वाला चांद चांद से बना है या पानी से बना है? तो ज्ञान में झलकने वाला राग राग से निर्मित है या ज्ञान से निर्मित है? अरे नहीं आया समझ में? ज्ञान में झलकने वाला राग तो राग से निर्मित नहीं है, वो तो ज्ञान से निर्मित है। और राग तो विभाव है, और अशुद्धता का कर्ता कौन बनेगा? ये तो अशुद्ध निश्चय ने से ये कहा जाता है कि पर ने नहीं किया, इसलिए ये कहा जाता है कि राग तूने कहा, तूने किया, क्योंकि उसी द्रव्य परिणमति सो करता, परिणमन है सो कर्म है। लेकिन ये तो शुद्धोपयोग की चर्चा चल रही है, भाव कर्म को तो अनादि से अपना माना है, वो उसकी जब तक ग्रंथि भेद ना हो, ग्रंथि भेद शब्द डाला है कासलीवाल जी साहब ने चिद विलास में, इतना गजब का ग्रंथ है, उसमें एक शब्द आया अब तो प्रसन्न हो, चिद विलास में गुरुदेव ये कहते हैं कि अध्यात्म की पराकाष्ठा है कासलीवाल जी साहब के ग्रंथों में, गजब का। तो भाव कर्म रागादि नहीं है ऐसा नहीं कहते, होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं आया समझ में? जैसे अन्य द्रव्य हैं, हो जाने तो जगत में हरिजन रहे होते होते तो मैं थोड़ी हरिजन हो गया, राग है राग हो जाने से मैं थोड़ी रागी हो गया, होना अलग चीज है और उस रूप होना अलग चीज है। मेरे भैया कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सोगानी जी का एक बोल है, हमें तो द्वेष से भी द्वेष नहीं है। नहीं आया समझ में? हम क्या करते हैं, विभावों को वाणी में से भेद विज्ञान करते हैं। सच पूछा जाए तो बताओ विभाव है या गेय है? फिर से इसमें बहुत बड़ी जबरदस्त रहस्य छिपा है, विभाव है या गेय है? कोई कह रहा गे और कोई कह रहा है हे। गुजराती में ने बोलते ना, ऐसा कह रहा ने। हाँ वैसे गुजराती का उच्चारण सही है, वो अभी मैं संस्कृत नहीं पढ़ा रहा। तो मेरा प्रश्न ये है, राग द्वेष आदि भाव कर्म हे है या गे है? ये प्रश्न पूछा गुरुदेव श्री से ज्ञान गोष्ठी में। ये तो प्रारंभिक भाषा है, हे है। वास्तव में देखा जाए जब गे होंगे तभी तो हे होंगे। भाई जाना ही नहीं यदि मैंने राग को, तो मैं ये कैसे कहूंगा कि ये हे है? वास्तव में देखा जाए जैसे ये परद्रव्य है दीवार, तो ज्ञानी के लिए तो राग भी परद्रव्य जैसा ही है, गे मात्र है। इसलिए आराधक जीव तो ये कहते हैं मैं तो जैसे आश्रम का ज्ञाता हूं, बंध का जैसे मैं ज्ञाता हूं, ऐसी मुक्ति का भी मैं ज्ञाता हूं, दोनों का ही मैं ज्ञाता हूं। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये चर्चा ज्ञान प्रधान नहीं चल रही अभी, ये जो चर्चा चल रही है अभी दृष्टि प्रधान चल रही है। जब दृष्टि का जोर इतना आता है कि परिणाम मात्र परद्रव्य दिखाई दे, परिणाम मात्र परद्रव्य दिखाई दे, ये भी आगम शैली की चर्चा नहीं चल रही, परिणाम मात्र परद्रव्य दिखाई दे। प्रश्न इसका नहीं है कि परिणाम मेरी ही पर्याय है। फिर से देखना, एक प्रश्न पूछा गया था, तो मैं राजकोट गया था तब की बात है, ये गुजरात में घूमे तो बहुत है कि अपने चंदू वो कहते ना डॉक्टर क्या नाम है अभी शायद नहीं है, तो मेरे उनको बहुत प्रेम था और मेरा उनसे मित्रता जैसी हो गई थी, तो मैं महीनों प्रश्न पूछता था गुरुदेव के और वो उनके साथ बहुत रही। तो बोले गुरुदेव से एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि जब पर्याय द्रव्य का अंश है, वे द्रव्य पूरा अंशी और पर्याय और गुण उसके अंश, फिर से समझना, द्रव्य पूरा अंशी प्रमाण का द्रव्य जिसे कहते हैं और गुण और पर्याय उसका अंश, तो फिर आप पर्याय रहित द्रव्य की बात क्यों कर रहे हो? पूरे द्रव्य के अनुभव की बात करो ना, पूरे द्रव्य के अनुभव की। तो अब आप देखो, अभी वो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि गुरुदेव ने ये उत्तर दिया हमें, ये उनने उत्तर दिया। अब किस पुस्तक में लिखा है मुझे नहीं पता भैया। जैसे ये कुर्ता है, तो ये कुर्ता पीछे से कुर्ता है या आगे से कुर्ता है? जल्दी बोलो, दोनों तरफ से कुर्ता है ना, तो पीछे से क्यों नहीं पहनती? क्योंकि जीव पीछे से पहने तो शोभा को प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह पर्याय द्रव्य का अंश होने पर भी पर्याय की दृष्टि करने से जीव शोभा को प्राप्त नहीं होता। एक उत्तर। दूसरा उत्तर और है इसका कि पर्याय स्वयं दृष्टि है। यदि दृष्टि दृश्य में मिल जाएगी तो दर्शन कौन करेगा? मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? क्या है, संयुक्त परिवार होते ना, कई घर में दो चार दो रानी जिठानी हो, बहुत देखे हमने संयुक्त परिवार घर में। तो पुराने बड़े बूढ़े लोग होते थे कि भी चार बेटे तो चारों साथ रहें और मैं बरगद का वृक्ष घर में बीच में रहूं। ये पुराने बड़े बूढ़ों की ऐसी भावना होती थी, और आजकल तो वो रही नहीं। अब चार कमरे, दो रानी जिठानी चार हैं। अब शाम का भोजन का समय है तो झांक झांक के देख रही चौके में कौन गई। वो अपने को बहुत बड़ी रानी समझती है, तो मैं कौन सी कम हूं, मैं तो नहीं जाती। अब चारों ही रानी है तो खाना कौन बनाएगा, पानी कौन भरेगा? तो दृष्टि यदि दृश्य के स्थान पर बैठ गई जाकर, तो दर्शन कौन करेगा? अरे नहीं आया समझ में? एक बात, एक एग्जाम्पल समझना आपको, तो यह अनुभूति का रहस्य समझ में आएगा, सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है जीव। कि पुराने जमाने में गांव में पिक्चर चलती थी, डब्बे में लेके आते थे लकड़ी का डब्बा, और एक अंदर रील होती थी और उसको ऐसा घुमाते थे। मेरे गांव में मेरी एक बड़ी बहन सीमा, तो हमारे अनाज का काम था गांव में, तो हम पैसे नहीं देते थे, अनाज देते थे डब्बा भर के, उसको वो अनाज ले जाता था। तब उनकी जब पिक्चर दिखा, वो क्या बोलता था, बंबई देखो 10 पैसे में, उस जमाने में, और मुंह से गाना गाता रहता था। अब वो लेंस से दृश्य को देखते थे हमेशा, और 10 पैसे में अपनी बहन को भी दिखाते थे, अब तू देख ले ऐसा करके, फिर मैं देखता था, फिर वो देखती थी ऐसा करके। अब मेरा प्रश्न है, लेंस दिखाई दे रहा है या दृश्य दिखाई दे रहा है? अरे बोलो। अरे यदि आप लेंस देखने लगे तो दृश्य दिखाई देना बंद हो जाएगा। लेंस देखने वाला है तो अनुभूति के काल में पर्याय तो ज्ञायक के दर्शन करती है, और यदि पर्याय पर्याय के दर्शन करने लगी तो ज्ञायक दिखाई देना बंद हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि जिस समय दृष्टि स्वरूप का अनुभव करती है, स्वरूप को देखती है, स्वरूप का दर्शन करती है, उस समय दृष्टि को ऐसा भी भेद नहीं रहता कि मैं स्वरूप का दर्शन कर रही हूं। ऐसा भेद हो तो भी स्वरूप दिखाई नहीं देगा, बल्कि दृष्टि स्वरूप में इस तरह तद्रूप हो जाती है कि अपने स्वर भूलकर ज्ञायक के ही स्वर गाने लगती है कि मैं ही ज्ञायक हूं। अरे भैया समझ में आ रहा है? बोलो। नींद आ रही है क्या? सोने जैसा ही है ये तो जगत में। हाँ, माने स्वरूप में विश्राम, इसी का नाम अनुभूति है। छुल्लक धर्मदास जी का नाम सुना? कल बताया, उन्होंने कहा जो विधि सोने की है, सोना नहीं, सोना, टू स्लीप, सोना, जो विधि सोने की है वही विधि आत्म अनुभव की है। सोने में पहले आती है तंद्रा और फिर आती है निद्रा। क्या कहा? तो जैसे कोई थका है व्यक्ति, तो थकावट, कोई व्यक्ति थका हुआ नहीं है तो करोड़ों कोशिश कर ले बिस्तर पर सोने के बाद नींद नहीं आएगी, और यदि थका है वो व्यक्ति तो लोकल ट्रेन में खड़े खड़े सो जाएगा। तो जे इसलिए संसार शरीर भोग से पहले थका हुआ होना चाहिए। अभी अभी रस तो जगत का पड़ा है और हम शुद्ध उपयोग करने बैठे, वो कैसे संभव है? तो ज्ञानी तो पहले से ही थका है, वो तो सविकल्प में आ गया था, तो वो बाहर की थकावट, इसको कहा वैराग्य, थकावट, अकेला पर थकावट भी निद्रा का कारण नहीं है। बिस्तर साफ हो अच्छी निद्रा के लिए, इसका अर्थ क्या है कि उसकी परिणति स्थूल पाप से रहित हो। सप्तव्यसन वाले को अनुभूति होगी क्या? हाँ, सप्तव्यसन चला गया तो अनुभूति हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। फिर तीसरी शर्त की क्षुल्लक धर्मदास जी ने उदाहरण दिया है, इसके बाद तीसरी शर्त और कही कि अच्छी निद्रा किसको आएगी, कि निद्रा के विकल्पों से रहित हो। कोई सोने वाला हाथ में अपने घर वालों को कहे सब चुप रहो मैं सोने वाला हूं, सब चुप रहो मैं सोने वाला हूं, बाहर एक बोर्ड लगा दो मैं सो रहा हूं, दरवाजे बंद कर दो, चारों तरफ पहरेदार लगा दो मैं सो रहा हूं, भाई साहब यदि तुम्हें सच्ची निद्रा होती तो सो गए होती अब तक। इसलिए अनुभव करने वाला, स्वरूप के निर्विकल्प अवस्था में जाने वाला, मैं निर्विकल्प होना है इस विकल्प से भी रहित हो। क्या बोला? इसलिए ध्यान के ध्येय, ध्यान का ध्येय निर्विकल्पता नहीं होती, ध्यान का ध्येय निर्विकल्प स्वरूप होता है, क्योंकि निर्विकल्पता भी पर्याय है और विकल्प भी पर्याय है। विकल्प से तो विकल्प मिटता ही नहीं, लेकिन निर्विकल्पता के विकल्प से भी विकल्प नहीं जाता, क्योंकि मुझे निर्विकल्प होना है, ये विकल्प भी विकल्प को आमंत्रण देता है। स्वरूप का अथाह प्रेम स्वरूप में समाने के लिए आतुर कर देता है जीव को। किसी चीज की बहुत इच्छा हो लोक में तो उसका प्रेम व्यक्ति को उससे मिलने के लिए आतुर करता है, तो ज्ञायक का प्रेम पर्याय को ज्ञायक से मिलने के लिए आतुर करता है। ये तो कहने की भाषा है, वास्तव में तो उस निर्विकलता के काल में क्या जबरदस्त खेल होता है वो ज्ञानी जाने। ये तो टोडर मल जी के साथ बीता इसलिए उन्होंने लिख दिया, बस ये लाइन पूरी करता हूं मैं। भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र पोतानु स्वरूप जाने। ये चैतन्य चमत्कार क्या चीज है? चमत्कार की चर्चा रात को ही थी। चमत्कार को इंग्लिश में बोलेंगे वंडर। जगत में एक ही वंडर है, आश्चर्य, वो कौन है? मैं हूं। अपनी महिमा इतनी आए कि विश्व राग का ढेर नजर आए। उस ज्ञानी को उस द्रव्य दृष्टि प्रकाश में आया है एक पलड़े में तीनों लोग, पर तीनों काल के सिद्ध और तीनों काल के गणधर और तीनों काल के केवलियों की निर्मल पर्याय और पूरे विश्व का समस्त वैभव और एक पलड़े में मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य परमात्मा, तो भी मेरे पलड़े को कोई हिलाने वाला नहीं। ये कहने के लिए नहीं, इससे कोई केवलियों का अभिनय नहीं किया जा रहा, ये अपने स्वरूप की महिमा बताई जा रही है। शुद्धोपयोग के काल में तो, फिर से सुनना, शुद्धोपयोग का मार्ग बताने वाले की भी महिमा आ जाए तो शुद्धोपयोग से च्युत हो जाए। बात चल रही शुद्धोपयोग की। हरिवंश पुराण में एक शब्द आया है बहुत प्यारा, हरिवंश पुराण में, कि भगवान के समवसरण में उन लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होता जिन्हें आश्चर्य भाव उत्पन्न होता है। ये क्या कह रहे हो आप? आश्चर्य का मतलब समवसरण में गए, हे भगवान देखो, ये देखो नीलमणि की थाली, देखो भगवान रत्नों की धूल, और देखो रत्नों की दीवारें, देखो कल्पवृक्ष, हे भगवान देखो इंद्र, और देखो देव, और देखो भगवान का भामंडल, अरे भगवान का शरीर कितना सुंदर है। ऐसी बाह्य चीजों को देख देख कर आश्चर्य करता है तो उसको अनुभूति नहीं होती। जहां केवल एक ज्ञायक वाणी बंद हो जाए, वाणी में तो बोलने में थकावट है और अनुभूति में थकावट का अभाव है, जहां जहां थकावट है वहां वहां समझना दिशा गलत है। यदि सुनकर आपको अभी थकावट हो रही हो तो समझना ये मेरा कर्म नहीं है, न सुनना मेरा कर्म है न सुनाना मेरा कर्म है। चैतन्य चमत्कार मात्र, इसको चैतन्य चमत्कार को छठी गाथा में ज्ञायक भाव कहा, गुरुदेव श्री इसको भगवान आत्मा कहते हैं, नियम सार में इसको परम पारनामिक भाव कहा, कारण परमात्मा कहा, और सोगानी जी साहिब इसको अकारण परमात्मा कहते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। ऐसा चैतन्य चमत्कार, इतनी महिमा आए इसकी, इतनी वैल्यू आए, जब तक उस शुद्ध तत्व की महिमा नहीं आए तब तक ज्ञान बाहर से समटकर अंदर नहीं समाता। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक उदाहरण देके समाप्त कर रहा हूं। पूर्व में आपने सुना होगा सोधर्म इंद्र, हमारे पंचकल्याणक के इंद्र तो भाई श्री बने थे। सच के सोधर्म इंद्र की बात करता हूं मैं। सोधर्म इंद्र जो सभा में होते हैं उनके पूरे जीवन में 40 नील सची इंद्राणियां होती हैं। कितनी? अन्य इंद्राणियां तो अलग है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब जरब 10 जरब नील 10 नील 20 नील 30 नील 40 नील इतनी इंद्राणियां होती है। और उसमें भी जो मुख्य होती है वो होती है सची। कोई ये पदवी सम्यक दृष्टि को मिलता है, साधारण बात नहीं है। 32 लाख विमानों का स्वामी होता है और वो सची इंद्राणी, और सची इंद्राणी की भी दासी, दासी होती नहीं है वहां, लेकिन नाम नेसी, वहां कोई दास दासी प्रथा नहीं है। और दासी के गले में रहने वाला हार, और हार का एक मोती, नहीं आया समझ में? 40 नील इंद्राणियां, उसमें भी सची, सची की भी दासी, और दासी के गले में रहने वाला हार, और हार का भी एक मोती, इतना कीमती कि चक्रवर्ती की संपदा इतनी कीमती नहीं है। ये अतिशोक्ति नहीं है, ये रियल बात है ये, क्योंकि चक्रवर्ती मनुष्य गति का है। आप जानते हो एक चक्रवर्ती की 10,000 व्यंतर सेवा करते हैं, और एक एक व्यंतर में 10,000 चक्रवर्ती का बल होता है। फिर से, एक चक्रवर्ती की 10,000 व्यंतर सेवा करते हैं, पर एक एक व्यंतर में 10,000 चक्रवर्ती का बल होता है। लेकिन पुण्य के कारण चक्रवर्ती की सेवा करते हैं, पुण्य के कारण ऐसा, लेकिन एक एक व्यंतर में 10,000 चक्रवर्तियों का बल है। तो फिर से समय बहुत हो गया, इधर क्या हुआ, इस दासी और दासी के गले में रहने वाला हार, और हार का एक मोती इतना कीमती कि चक्रवर्ती की संपदा इतनी कीमती नहीं। जब एक मोती इतना कीमती तो पूरा हार कितना कीमती होगा? जब पूरा हार इतना कीमती तो जिसने उस हार को पहना है वो दासी कितनी कीमती होगी? जब दासी इतनी कीमती तो जिसकी वो दासी है वो इंद्राणी कितनी कीमती होगी? और जब इंद्राणी इतनी कीमती तो जिसकी वो इंद्राणी है वो इंद्र कितना कीमती होगा? और जब इंद्र इतना कीमती तो इंद्र भी जिस दिगंबर मुनिराज के चरणों में नमस्कार करता है वो दिगंबर मुनिराज कितने कीमती होंगे? जब दिगंबर मुनिराज इतने कीमती तो जो दिगंबर मुनिराज तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं वो तीर्थंकर कितने कीमती होंगे? जब तीर्थंकर इतने कीमती, जो तीर्थंकर जिस शुद्धात्मा में समा जाते हैं वो अपनी शुद्धात्मा ज्ञायक भाव कितना कीमती होगा? घर में जाकर विचार करना। वो ज्ञायक की महिमा ऊपरी नहीं आनी चाहिए, रियल में आनी चाहिए। चेहरे का विषाद मिट जाना चाहिए, उदय की चिंता समाप्त हो जाना चाहिए, बाहर का हर्ष शोक नष्ट हो जाना चाहिए। एक केवल मैं ज्ञायक हूं ऐसी प्रसन्नता रहे, तो उस ज्ञायक की महिमा के बस, महिमा कौन लाता? ज्ञान। तो वो उपयोग, प्रकट उपयोग का हो या ज्ञान, तो वो स्वरूप में समा जाता है। उसकी विधि चल रही है, बहुत समय हो गया आज, क्षमा चाहता हूं। वो विषय क्या रहे, क्या वो अधूरा छूटता नहीं वैसे है गलती वो मेरी
सहजानंदे सोदस्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप 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 अशरीर सिद्ध दर्शन प्राप्त उष्पादि मार्ग परम चौबीस जिनेन्द्र भगवान नो जय। हाल विदेह क्षेत्र में विद्यमान समोसर में शोभायमान श्रीमंदरादि अजित वीर पर्यत विश्वर्मान जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। ध्रुवधाम दक्षिण धुणी दखावना श्री बाहुबली मुनिन्द्र भगवान नो जय। दिव्यधनी सारभूत नित्य बोधक परमागम समय सारधि समस्त जिनवाणी मात नो जय हो। कलिका सर्वज्ञ हलता चलता सीतम भगवान श्री कुंकुंदाचार्य देव नो जय। लाखों करोड़ों भक्तों तारण हर अनंत दुपकारी श्री कहान गुरु देव नो जय। प्रसमूर्ति धन्यवतर पूज्य भगवती मात नो जय हो। अमृत तत्व विचारक परम कुकारी परम कृपाणु देव नो जय हो। शाश्वत पर्व अष्टानिका पर्व नो जय हो। श्री परम पवित्र सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। बोलो द्वादश अंग में समस्त जिन वाणी मात नो जय हो।